तीन आदमी के लिए इतनी सी जगह, अजीब हाल है।
सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम।
एमाद साहब, परेशान ना हो, ऐसा लग रहा है कि हमें महाज पर ले जाएंगे, हमें वहां आपकी कमी खल जाएगी।
क्या तुम्हें भी जाना है?
मेरी असली जगह फ्रंट लाइन है, पीछे नहीं रह सकता।
इत्तेफाकन मेरी लाइन भी फ्रंट लाइन ही है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मुझे भी फ्रंट लाइन पर ले जाएंगे।
तुम जल्दी मत करो, वक्त आने पर आगे भी चले जाओगे।
तुमने एक बार बस में मेरी मदद की थी, बहुत शुक्रिया। इस दफा हाजी से सिफारिश कर दो ताकि मोहसिन खैरी से बात करके मेरा भी काम बन जाए।
तुम नए हो, नहीं जा सकते। बकौल मोहसिन खैरी के रजाकार, जब तक सही से ट्रेन ना हो जाए नहीं जा सकते।
ऐसा कह रहे हो जैसे खुद बड़े पुराने मॉडल हो, तुम भी तो हमारी ही तरह हो। ये बताओ, नए आए हो क्या?
नहीं।
कितनी मर्तबा आ चुके हो?
तुम जान के क्या करोगे,
मालूमात में इजाफा हो जाएगा।
तीसरी दफा है।
लंबी मत छोड़ो अहमद, तुम भी क्या चीज हो यार।
अहमद भाई, कल फल्ला को भी साथ ले जाओगे ना?
वो तो हर दफा आना चाहता है, लेकिन ना हाजी राजी होंगे ना मोहसिन खैरी। फला जब फ्रंट लाइन पे जाते हैं तो पूरे यूनिट का काम ठप हो जाता है। बंदे खुदा जब छुट्टी पे जाता है तो तीन चार दिन में वापस आ जाता है।
किस्मत की बात है, किसी की अच्छी किसी की बुरी। मैं और फल्ला तो बदकिस्मत लोग हैं।
हम इसे बख्त कहते हैं, जो हमारी कभी अच्छी नहीं रही, हमारी सारी जिंदगी स्याह कर दी। देखता हूँ कि कोई अच्छी किस्मत मिल सकती है या नहीं।
फलाह से पाला पड़ा है, मजा आ गया, खूब रगड़े गए।
फल्ला मेरे सामने ठहरने की ताकत नहीं रखता, तुम अपनी खैर मनाओ।
चलो चलो तुम लोग जल्दी करो।
जल्दी करो तेहरान के सियानो, हमसे कुछ बुरा देखा है तो हलाल करना।
सब खे जाओ अहमद भाई।
मोर्चे पर अहमद को ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है, कहाँ है, कुछ पता है?
नहीं पता भाई।
ओहो, तो फिर कहाँ गया वो? सदके जाओ।
शुक्रिया, खुदा
खुदा हाफिज।
तो क्या मजा आ रहा है, पर्दा जरा बराबर कर दो, कोई आ जाएगा। भैया अभी ने तो कहा था कि दिल को समंदर के हवाले कर दो। तुम्हें मां की कसम, जब तक समंदर न पहुंचे छोड़ने वाला नहीं हूं। इस पर्दे को बराबर कर दो।
चलो उतरो।
छोड़ो ना अहमद यार,
फ्रंट लाइन मजाक नहीं है। मोहसिन खैरी को तुम्हारे आने का पता चला तो फौरन तेहरान भेज
दिया। सच कह रहे हो क्या?
हाँ।
दरिया
उधर जाओ असद। असद, मैं जा रहा हूं।
अपना बैग ले लिया? माशाल्लाह।
मोहम्मद, दो लड़कों को शहर भेज दो, जाकर बाइक ले आए। माशाल्लाह, जल्दी करो।
हंस रहे हो मेरे ऊपर?
आओ मेरे पास बैठो, तुम भी मेरी तरह शर्मसार हो गए।
यानी तुम्हारी हालत मुझसे ज्यादा बेहतर है?
अभी बेहतर नहीं है, लेकिन हो जाएगी। मैं किचन में रहने वाले में से नहीं हूँ।
आगे आगे देखिए होता है क्या।
बैठो आराम से।
नहीं है। उनकी बातों की सच्चाई की दलील जेल से छूटने के बाद तुम्हें दे दूंगी, जाके उसका कैरेट पता कर लेना। खुदा हाफिज।
सैफी के यहां से आ रहा हूं
तो
इधर उधर की बेकार की बातें करने लगा, मैंने गिरफ्तार कर लिया।
क्या कह रहा था?
कह रहा था असद के साथ लड़ाई का सबब कर्जा है जो वो वापस नहीं कर रहा।
बस यही? उस चीज के बारे में जो असद ने दी है कुछ नहीं कहा?
उसी नुक्ते पर जाकर ऊट पटांग बोलने लगा। कहता है असद ने माँ का कंगन गिरवी रखा था फिर वापस ले लिया था। कोई बात नहीं, एक दिन हवालात की हवा खाएगा तो कल सब कुछ उगल देगा।
इसे सुनो, शायद सैफी सच बोल रहा है।
यानी असद के बाबा की बातों का शाहिद एक कंगन है? भला हो सकता है? असद के बाबा की बातें क्या थी जिसका शाहिद एक कंगन हो सकता है?
माँ कहती है ये तुम्हें देती हूँ ताकि तुम इसका कैरेट, तुमसे कह रहा हूँ।
अच्छा बोलो।
वो कहती है कि तुम्हें देती हूँ ताकि तुम इसका कैरेट मालूम करवाओ। ठीक है, हो सकता है कि ये सोने की चूड़ी हो, सोने का कंगन जो बहुत कदीम और कीमती है।
तुम कहना चाहते हो कि असद, खानम जान और मनोज चहर का सारा झगड़ा एक एंटी कंगन के लिए है? मगर उसकी कीमत कितनी है जिसके लिए माँ अपना पूरा घर और जिंदगी देने के लिए तैयार है लेकिन मनोज चहर को नहीं देना चाहती? तुमको याद है मर्जिया अवामी हमाम में गई और असद को कोई चीज दी?
मर्जिया साहिबा।
याद है मर्जिया साहिबा अवामी हमाम गई?
याद है, कहो।
असद हमाम के बाद सीधा एंटीक शॉप गया। तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूँ? शायद माँ ने कंगन मर्जिया को दिया ताकि वो कंगन असद को ले जाकर दे दे और फिर असद भी एंटीक शॉप ले जाकर उसकी कदामत मालूम करे।
ठीक है, सही समझ गया, मजीद वजाहत की जरूरत नहीं, उठो चलो।
एंटीक शॉप चले?
हाँ जल्दी करो, कहो सैफी को भी आजाद करें, असद तक पहुंचेंगे तो इमाद भी हमारे पंजे में होगा।
भाई क्या नाम बताया तुमने अपना?
सुहेल।
सुहेल साहब, हमें यहाँ पर बेकार बैठे हुए पूरे 5 घंटे हो गए।
महाज में दफ्तरी काम ऐसे ही होता है, बेकारी है।
तुम खुद नहीं थकते हो क्या?
चारा नहीं, मोहसिन साहब अपनी जगह से हिलने ही नहीं देते।
क्यों?
रहने दीजिए।
हमें और कितना इस 2 गज जगह में बेकार रहना होगा?
मेरा तो 2 महीने से यही काम है।
2 महीने? कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं तो इस हालत में आधा दिन भी नहीं रह सकता। सुहेल साहब, ये नक्शे क्यों इतने राजदाना तरीके से खींचे गए हैं?
फौजी नक्शे इसी तरह होते हैं, ये काफी सीक्रेट होते हैं, समझने के लिए हुनर चाहिए।
क्या होता जो इन्हें भी आम नक्शों की तरह बनाते जो हमको भी समझ में आ जाते?
पर ये नक्शे आम नक्शों से कहीं ज्यादा दकीक हैं।
सुहेल साहब सच कह रहे हो तुम? मतलब समझ में आए तो सीधा मंजिल पे पहुंच जाओगे?
जी, समझ में आए तो सीधा मंजिल पे पहुंचेंगे।
मैंने पहले भी आपके आदमियों को बताया है कि वो हमारे मोहल्ले का आदमी है, पहचान वाला है। पता नहीं उसे ऐसा क्या काम आ गया था कि एक दिन आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। क्योंकि वो पहले भी 1-2 बार कर्ज ले चुका था और उसने वापस भी नहीं किया था, इसलिए मैंने मना कर दिया।
चाचा जान, बच्चा अभी कम सिन है, इसको नहीं पता कि कानून के रखवालों की तहकीकात में खलल डालना कितना संगीन जुर्म है। आप तो बड़े हैं, सब कुछ समझते हैं, सच बताइए।
मेरे बेटे ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा है।
सच यही है? क्या अभी पुलिस को बुलाकर एंटीक्स की गैरकानूनी खरीद फरोख्त के जुर्म में तुम्हारी दुकान सील करवा दूं?
वो ये कंगन बेचने के लिए लाया था। क्योंकि वो गैरकानूनी था इसलिए हमने नहीं लिया, हमने उसे मना कर दिया और हमने कहा कि ये हमारा काम नहीं है।
कितने में खरीदा?
उसने बेचा ही नहीं।
कितने का था?
बहुत कीमत थी।
यानी के
एक एंटीक चीज थी, सल्जुकी दौर की थी, बल्कि उससे भी पहले की थी।
वायरलेस से इतला दो, आके इनको अरेस्ट कर लें।
किस जुर्म में?
एक दफा बताया ना कि आसारे कदीमा की खरीद फरोख्त गैर कानूनी है।
सच कह रहा हूँ, कंगन नहीं खरीदा हमने।
अच्छा किया तुमने, ये पिछली खरीदो फरोख्त के जुर्म में।
मेहरबानी करो भाई,
अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने कहा हाथ आगे बढ़ाओ।
मैं या बाबा?
पहले तुम।
अरे मैं मेहरबानी करके इसको ना ले जाए।
देखिए हम इज्जतदार लोग हैं।
अजीब बात है कि सब झगड़ा एक एंटीक के लिए है। ये मजाक है कि ये झगड़ा सब एक एंटीक के लिए हो रहा है।
बात इससे बढ़कर है।
कैसे?
तुम क्या करना चाहते हो?
हाँ तो फिर इसका क्या मतलब है?
वो चीज जिसे असद बाबा की अमानत कह रहा है कंगन नहीं था, क्योंकि कंगन उस रात माँ के हाथ में था, हालांकि बाबा की अमानत असद के हाथ में थी। बाकी सुनो। सईद, इसमें कोई दास्तान छुपी हुई है, निजामी और शाहनामे के दास्तानों की तरह कोई अफसाना। मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बात है जो अक्ल मंतिक और इल्म से मुताबिकत नहीं रखती।
शाहनामा अफसानों से भरा पड़ा है।
तुम ठीक समझे, वो अफसाना जो असद के बाबा ने सुनाया है, असद के ख्याल में ये सब ख्याली बातें हैं। इसके बरक्स असद की माँ इस पर यकीन रखती हैं, और इसका सबब वो कंगन है जो 700-800 साल पुराना है।
हम कब तक इस चोर और पुलिस के खेल को और खेलते रहेंगे?
मतलब क्या तुम्हारा?
मेरा मतलब बिल्कुल वाज़े है, हम चलते हैं सीधे असद की माँ के पास और उनसे असद का पता मालूम कर लेते हैं।
नहीं यार, माँ तो समझती है कि उनका बेटा अभी तक जेल में है।
हाँ, लेकिन हम गूंगे तो है नहीं। हम उनसे कहेंगे कि आपका बेटा जेल में नहीं है, तो वो बताएंगी कहाँ है। अगर नहीं बताया तो गिरफ्तार करके पूछताछ करेंगे।
नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस मामले को इतना आसान क्यों ले रहे हो।
कोई खास बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी माँ से हम कुछ नहीं उगलवा सकते।
तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम भी फिल्मों में दिखाए जाने वाले सीन की तरह आखिर उन तक इस केस पर काम करते रहे। तुम ही तो कह रहे हो कि अमाद से हमें समद कंपनी का सुराग मिलेगा, और तुम्हारा ही कहना है कि समद कंपनी ने बाजार की कमर तोड़ रखी है, तो फिर क्यों उनके साथ नरमी से काम ले रहे हो? कम अज कम चले उसकी बहन के मुंह से कुछ बात उगलवाए।
ये ख्याल बुरा नहीं है।
कौन सा? मर्जिया से तफ्तीश का?
मर्जिया साहिबा, कल उनसे बात करेंगे।
अहमद साहब, इतना इस नक्शे को मत घूरिए, पागल हो जाएंगे।
सुहेल भाई,
इतने दर्जे शुमाल और इतने दर्जे जुनूब का क्या मतलब है?
नक्शा खाने का हुनर सीख लिया तो ये भी सीख जाएंगे।
तुम पढ़ सकते हो क्या?
कोई मुश्किल काम नहीं है।
मुझे सिखा सकते हो?
आप चाहें तो सिखा सकता हूँ।
भिखारी से तो बेहतर है, सिखा दो मुझे।
फिलहाल मैं चलता हूँ।
कहाँ?
अजान हो रही है, आप सुन नहीं रहे?
हाँ, मैं वो क्या कहते हैं, मैं अकेले ही पढ़ लूंगा।
मतलब ये कि फरादा?
हाँ वही।
फरादा ही क्यों? आपको इमाम जमात की शर्तों पर शक है क्या?
ना, इस तरह ज्यादा ऐसी हूँ। सुहेल भाई, हर किसी का अपना सलीका होता है ना। क्या है, भाजमात ना पढ़ना जुर्म तो नहीं है?
आपके दोस्त इमाद सही कह रहे थे कि आपकी फैमिली तागूती है।
अब उसने एक बात कर दी, आप ढिंडोरा पीट कर हमें बदनाम तो ना करें।
सोचा शायद आपको नमाज पढ़ना सिखाया नहीं, क्योंकि नमाज खां बंदा हमेशा जमात की तलाश में रहता है।
माफ कीजिएगा, मुझे 15 की 15 रकात आती है।
कुल तो 17 रकात है।
लेट हो गए तो सवाब से महरूम रह जाएंगे। हाँ।
मैं वापस आकर नमाज पढ़ना सिखा दूंगा और नक्शा पढ़ना भी। मुतमईन रहिए, किसी को बताऊंगा भी नहीं। सच में?
हाई शाबाश, ये सोच रहा था कि तुमसे कैसे सिखाने को कहूं। बेशर्म आदमी, एक दफा सीख लिया तो फिर देखना कैसे फरादा खजाने के पीछे जाता हूं।
हाजी साहब, आप नमाज पढ़ें।
ठीक है,
मैं वजू करता हूं।
तुम भी जल्दी आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम हाजी फतेहल्ला साहब।
वालेकुम सलाम। पूरा हो गया?
जी जनाब।
इसमें तो पूरी गंदगी है।
कहां से गंदा लग रहा है? सब ठीक ठाक तो है।
मेरा मतलब है कि मैं इसमें खाना पका के फौजियों को भेजूं। फौजी ऐसा खाना खाएंगे तो दुश्मन की क्या जरूरत, सब यूं ही मर जाएंगे फौजी।
देखिए जनाब, आप ज्यादा सख्ती ना करें।
सबसे पहले वो पानी बंद करो, ज्यादा खर्च ना करो। दूसरे ये कि अगर ये पतीला साफ ना हुआ तो पल्ला साहब से जाकर बोल दूंगा किसी और को भेजो।
आइए, खुशामदीद फतेहल्ला साहब।
तुम वजू कर रहे हो?
एक तरह से हाँ।
किस फिरके में ऐसे वजू करते हैं?
वजू तो मैं पहले कर चुका था, मेरे हाथ पांव में थोड़ी गंदगी लग गई थी, सोचा पहले इसको साफ कर लूं।
क्या इसका मतलब ये है कि पानी से हाथ धो? नहीं मेरे भाई, पहले हाथ को सुखाओ फिर शुरू से वजू करो।
जी हाँ, शरी हुक्म वही है जो आप फरमा रहे हैं। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा, आप जाएं।
जीते रहो।
ठीक है, जाएं।
أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خدا قبول کرے. سہیل بھائی تھوڑی جگہ دینا. قبول ہو فلا صاحب.
قبول حق ہوا.
شکریہ شکریہ.
عرض کروں کہ نماز سے پہلے میں فاتح صاحب سے بات کر رہا تھا تو تمہاری بات آئی.
سچ کہہ رہے ہیں؟
ہاں
خیر ہے انشاءاللہ.
خیر ہے بس تمہارے کام سے ناخوش تھا. کہہ رہا تھا تمہیں آلو چھیلنے بھیجا تھا. اس نے جا کے دیکھا کہ تم چھلکوں کے ساتھ آلو بھی کاٹ کاٹ کے کوڑے کی ٹوکری میں ڈال رہے ہو. جب اس نے اعتراض کیا تو تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی.
یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد میں نے ان سے معافی مانگ لی.
ہاں بتایا تھا. معافی مانگنے کے بعد اس نے تمہیں دیکھ کا خیال رکھنے بھیجا تھا. لیکن جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ چاول میں پانی خشک ہو گیا ہے اور چاول ادکچے ہی تہ میں لگے ہیں. آخر کار برتن دھونے پہ لگایا. لیکن جو جو برتن تم نے دھوئے تھے اس کو وہ برتن دوبارہ دھونے پڑے تھے.
یہی تو آپ جانتے ہیں فلا صاحب, یہ کچن وچن میرے بس کی بات نہیں ہے. اور اگر اب تک میں فتح اللہ صاحب کے پاس ٹکا ہوا تھا تو صرف آپ کی محبت کی وجہ سے.
اتفاقاً فاتح صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ تمہیں کچھ اور کام دیا جائے.
آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کو شروع سے یہی کام کرنا چاہیے تھا.
لیکن آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ تمہیں آسان کاموں کی قدر نہیں ہے.
کیا مطلب؟
یعنی طے پایا کہ فی الحال تمہیں اسی دھونے دھلانے کے کام میں رکھا جائے تاکہ اطمینان سے یہ مرحلہ طے کر سکو, اور اس کے بعد اگر صلاح ہوئی تو ایک مہینے بعد تمہیں آلوؤں کو چھیلنے کے کام میں ڈال دیا جائے گا.
فلاح صاحب ذرا میرے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھیے. میرے ہاتھ میں اور آپ کے پاؤں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے
دعا ہو رہی ہے.
ہمارے پیچھے.
بہت اچھا, تم ایسا کرو یہی بیٹھے رہو, اطمینان سے میں اس سے بات کر کے آتا ہوں.
اگر تم ڈھیلے ڈھالے بات کرو گے وہ تم کو جواب نہیں دے گی.
تم مجھے سکھا رہے ہو؟
نہیں نہیں, مجھے لگتا ہے تم ڈر رہے ہو.
ڈرنے کی کیا بات ہے, میں بالکل نارمل ہوں. تم بھی میرے اسسٹنٹ ہو اس لیے حد میں رہو. یہ لو,
ذرا خود کو سوار لو. ذرا جلدی جاؤ ورنہ وہ چلی جائے گی.
جاتا ہوں. معاف کیجیے گا. السلام علیکم.
آپ نے ہمیں یہاں کیسے ڈھونڈا؟
کیا کہہ رہی ہیں محترمہ, ہمارا تو کام ہی ڈھونڈ نکالنا ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں؟
جی فرمائیے.
اصل میں کچھ سوالات کرنے تھے آپ سے جن کا آپ کو جواب دینا ہوگا.
جواب دینا ہوگا یہ کیا بات ہوئی, میں نے کوئی جرم کیا ہے؟
میں چاہتا تھا کہ اس دن جو واقعہ پیش آیا اور میں آپ کو روکنے پر مجبور ہوا اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہی کروں.
آپ مہربانی کر کے اپنا سوال پوچھیے.
آپ کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا.
کس لیے؟
کہا نا کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہوگا.
پھر کہہ رہے ہیں دینا ہوگا؟ آپ پوچھیں گے یا میں جاؤں؟
نہیں پوچھتا ہوں. اسد کہاں ہے؟
مجھے کیا پتا کہاں ہے, آپ نے پکڑا تھا اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں.
بھاگ گیا.
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے عبرت ہے کہ آئندہ ایسا نہ کرے. اصل میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے پر میں نہیں بتاؤں گی.
میں نے کیا بے احترامی کی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہی ہیں؟
لیکن میں نے کیا کیا ہے؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ جانتی ہیں لیکن بتا نہیں رہی.
یہی جو میں نے کہا.
اچھا تو آپ میرے ساتھ تھانے چلیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قانون کے رکھوالوں کے کام میں خلل ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے.
جب تک آپ گرفتاری کا وارنٹ نہیں دکھائیں گے میں کہیں نہیں جاؤں گی.
اسد آپ کی ماں کے کہنے پر ایک جگہ گیا ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ جو کچھ بھی جانتی ہیں بتا دیجیے ورنہ
کیا آپ کیا کر لیں گے؟ ہاں مجھے اسد کے بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن مار بھی ڈالیں گے تب بھی آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی. اب کیا کر لیں گے آپ؟
دیکھیے محترمہ سنیے, مجھے نہ آپ سے کوئی دشمنی ہے نہ آپ کے بھائی سے. میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. अगर आप कुछ जानती हैं तो मुझे बता दीजिए, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा असद के लिए करने की पूरी कोशिश करूंगा।
मुझे कुछ नहीं पता, इजाजत दें।
अभी तो कह रहे थे कि सब कुछ जानती हैं।
झूठ बोला।
आपने झूठ क्यों बोला?
उस दिन का बदला लेना चाहती थी जो ले लिया।
तो कौन जानता है, शायद आप झूठ बोल रही हूँ।
मैं बता दूं कि मैं झूठी नहीं हूँ, असद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
माफ कीजिएगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, अब से आप एक मशकूक फर्द शुमार होती हैं। चलिए थाने चलिए।
अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अस्सलाम वालेकुम, मैं तारुफ कराता हूँ अपना, मैं थाने का अफसर हूँ।
मुझे खुद पता है।
आप कहाँ से जानती हैं? आप कुछ नहीं जानती।
अच्छा अब जो भी हो, तुम मेरे दरवाजे पर आकर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो?
अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा मोहतरमा, मैंने आपको तंग किया है क्या?
देखो पुलिस वाले साहब, तुमको अपने मुस्तकबिल की फिक्र करनी चाहिए, नहीं ये कि अपनी ड्यूटी की खातिर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद करो। अब जाओ अपना काम करो, आइंदा यहाँ नजर ना आना, अब नजर आए तो अच्छा ना होगा।
आप ठीक कह रही हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, शायद आपका इरादा बदल जाए।
अब जाओ भी यहाँ से, फिर अपना राग अलाप रहे हो।
चलता हूँ।
लगता है अच्छा जवान है, बड़ी अच्छी तरबियत पाई है इसने। मैंने इतनी सख्त कलामी की लेकिन बदतमीजी नहीं की इसने, है ना? तुम्हारे घर में दूध का पैकेट है, मैं इतना दूर ना जाऊं?
जी हाँ।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो
हुआ।
बहुत बड़ी गलती की उनको अपनी माँ के घर लाकर। सहित कभी भी जज्बाती मसाइल को अपनी ड्यूटी से मिक्स न करना।
तुम्हारी ही गलती है जो इतना तूल दिया।
क्या कह रहे हो, ज्यादा जानते हो तो खुद जाकर उससे बात कर लेते।
मैंने तुमसे कहा था ना कि उनको थाने ले आकर पूछताछ करते हैं।
एक लहजा भी आंख से ओझल न होने देना। अब तो माँ और बेटी दोनों जान गई हैं कि असद जेल में नहीं है, किसी भी वक्त असद के पीछे जा सकती हैं।
जी जनाब।
जाओ अपने काम पर, कोई भी नई बात हो तो फौरन मुझे खबर कर देना।
जरूर।
किस चीज को घूर रहे हो?
तुम्हें कोई बात हुई है क्या?
कैसी बात?
बस यूं ही। कुछ वक्त से महसूस कर रहा हूं तुम्हारे काम और जज्बात दोनों मिक्स हो गए हैं। तुम शादी नहीं करना चाहोगे?
क्या नहीं?
हाँ हाँ, कुछ नहीं।
कुछ नहीं को घूरना है तो उस तरफ मुकर और उसे घूरो।
मैं इस तरफ देखना चाहता हूँ।
मसलन किस लिए?
अगर कोई बात है तो मुझे भी पता चलनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों आपस में दोस्त हैं।
अब ज्यादा सुराग रसा ना बनो। खुद को अगर बहुत बड़ा अफलातून पुलिस समझते हो तो जाओ असद और इमाद को ढूंढ निकालो। नहीं मैं।
अच्छा।
अब उस तरफ मुंह करो और कुछ नहीं को घूरो, बहुत हो गया, गुस्सा आने लगा है मुझे। हम दोस्त हैं।
हाँ हाँ हम दोस्त हैं, अगर इसके अलावा कुछ है तो बोलो।
मेरे सामने सुराग रसा बनता है।
अच्छा ठीक है मेरे बॉस।
देखिए सर साहब, ये यानी मशरिक, एन यानी शुमाल, डब्ल्यू से क्या बनता है?
ये तो एम है।
आप इस तरफ से देख रहे हैं।
हाँ।
डब्ल्यू से क्या बनता है?
क्या शुमाल
नहीं, मगरिब।
मगरिब
इसका मतलब है जुनूब।
इन खतों पे नाम और पते लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताया था।
शुक्र है।
ये स्कूल के बच्चों के खत हैं, रजाकार भाई को दे देना।
जनाब समझ आ रहा है।
ये भी मोहसिन साहब तीन सीक्रेट खत हैं जो आपके लिए मरकज से भेजे गए हैं, और ये चंद पैकेट हैं, किसको देने हैं मालूम है ना?
इसका मतलब समझ आ गया।
खुदा तुम्हारा भला करे। तेहरान की क्या खबर है?
क्या कहा?
वही भाई, तेहरान की पूछ रहा हूँ।
हाँ तेहरान। ये सुहेल साहब के लिए। सोहेल साहब, आपके घर का एड्रेस कितना मुश्किल है, पूरा शिमरान घुमाया तब जाकर मिला।
मुबारक हो सोहेल, आखिर जवाब मिल गया।
शुक्र है।
कहाँ चल दिए वहीद, बैठो चाय पी के जाओ।
शुक्रिया, अभी शाम हो रही है, फिर कभी।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज।
खुदा तुम्हारा भला करे। असद भाई, इन खतों को लो और जिन पर नाम लिखे हुए हैं उनको लिस्ट के साथ मिला लो, और देखो कैंप में कितने लोग हैं, उन सब में ये बांट दो, और जो बाकी रह जाएं उनको रख दो, फ्रंट लाइन पर भेज देंगे।
सर, आंखों पर मौसी साहब।
और मदरसे के लेटर्स को महाजे जंग पर भेज देंगे।
मौसी साहब, हमारा क्या बनेगा जिनका अभी तक पलाक ही नहीं आया?
हद से ज्यादा जल्दी कर रहे हो, कहा ना एक हफ्ता सब्र करो।
एक हफ्ता तो बहुत देर है मोहसिन साहब। मैं महाज पर खत तकसीम करने तो नहीं आया, मैं तो फ्रंट लाइन पर जाने के लिए आया।
सबसे पहले प्लाक होना चाहिए, और दूसरे तुम्हारे ट्रेनर का रजायतनामा, जो ना तुमसे राजी है ना इमाद से, और तुम्हारे घर वालों का लेटर भी चाहिए जिस पर ये लिखा हो कि तुम्हारे जंग पर जाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है।
ये तो कॉलेज के एंट्री टेस्ट से भी ज्यादा मुश्किल काम है।
गैर कानूनी रजाकारों के साथ मेरा तरीका यही है, और पसंद ना हो तो तेहरान चले जाओ और कानूनी तरीके से आओ।
मोहसिन खैरी साहब, कम से कम इन खतों को फ्रंट लाइन पहुंचाने दो, ताकि दूर से ही फ्रंट लाइन देख लूं।
तुम्हारा काम नहीं है, फ्रंट लाइन के नामा रसा को बहुत माहिर होना चाहिए। रास्ते में मुसलसल मार्टर के गोली गिरते हैं, जानते हो कामयाब लोगों का राज क्या है? सब्र।
नहीं बताया था कि शिमरान के हो?
असद साहब, हम भी जाने वाले हैं, हलालियत हो।
अच्छा, अब ज्यादा खुश मत हो, ये खैरी साहब है जो जाने के हुक्म पर दस्तखत करते हैं, ना कि बाबा का खत।
मोहसिन साहब, बाबा की इजाजत का मुंतजर था, जो आखिरकार 2 महीने बाद जो मैं मुसलसल खत लिखता रहा और वो कभी जवाब नहीं देते थे, राजी हो गए हैं कि मैं महाज में रह जाऊँ। ये लो, तुम्हारे खतों से ये मालूम होता है कि इस मुद्दत में तुम्हारी अक्ल और शऊर पुख्ता हो गए हैं, और तुम अब वो पुराने वाले सोहेल नहीं रहे। तुम अब बेहतर जानते हो कि तुमने कितना बड़ा फैसला लिया है। मैं उन दलाइल को जो पिछले चंद खतों में तुमने लिखे हैं कदर की निगाह से देखता हूँ, और बावजूद इसके कि तुम बहुत याद आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कामयाबी की दुआ करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
ऐ शाबाशे, तो तुम भी हमारी तरह गैर कानूनी आए। काश हमारे लिए भी कोई इस तरह का खत भेजता, इस मोहसिन खैरी के शासन जात मिल जाती। सोहेल, तुम जब शिमरान में थे तो नमाज पढ़ते थे क्या?
हाँ, मोहसिन साहब ने सिखाई मुझे, जो कुछ आता है ये सब मोहसिन साहब ने सिखाया है मुझे। आप भी अगर उनकी बात मानेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे।
तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल था?
नहीं।
अल्लाह किस्मत दे बस। भाई काजिम, बैरंग बैरंग बैरंग।
ग्रुप के लड़कों के साथ गया है।
कहाँ?
यही सुलेमान फारसी मोर्चे तक।
बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।
मोहम्मद मोहम्मद भाई, रुको, खत है तुम्हारा। तुम्हारा नाम मोहम्मद है ना?
था और रहूंगा।
अच्छा, ये लो,
ये तो मोहम्मद जाफरांची का है।
तुम ही हो ना?
मैं मोहम्मद जाफरानी हूँ।
वो कहाँ है?
2 हफ्ते पहले शहीद हो गया है। उसका खत कितना लेट पहुँचा है।
अरे भाई, ये बताओ, भाई काजिम बेरंग मोर्चे में था?
इमामबाड़ा गया है।
वहाँ क्या करने गया है?
नौहा पढ़ने। उनकी आवाज नहीं सुन रहे हो क्या? सब मेरा खत है क्या?
नहीं।
अच्छी तरह से देख लिया ना?
हाँ।
भैया कोई बात हो गई है क्या?
तुम्हें नहीं पता हम फ्रंट लाइन पे जा रहे हैं।
अचानक रात में?
मोहसिन साहब कह रहे हैं इराकियों के हरकत में इजाफा हो गया है।
किस चीज में इजाफा हो गया है?
हरकत में, हिलने में। हम जा रहे हैं ताकि अगर उनके हमले का इरादा हो तो हम पहले से उनको तबाह कर दे। इजाजत दें।
بلند محمد والے محمد پر صلوات بھیجیے۔
कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना?
तुम्हें भी साथ ले जा रहे हैं क्या?
हाँ, मोहसिन साहब ने कहा है कि मैं उनका वायरलेस ऑपरेटर बनकर ट्रेन हो जाऊँ।
मोहसिन भी तुम लोगों के साथ जा रहे हैं?
जी, लगता है बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो मरकज में नहीं रहना चाहते। अब छोड़ो इन बातों को। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना?
हाँ, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। जाओ मजे करो।
खुदा हाफिज।
شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه، همین که فکرمی